जय माँ मातृभवन बारीपद उड़ीसा के स्वर्णिम जयंती के शुभ अवसर पर पुण्य अवसर पर एक विषय दिया गया है और विषय का जैसा कि उड़ीसा में हम अक्सर देखते हैं एक मूल विषय होता है फिर एक सब टाइटल होता है। तो मूल विषय है कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए और जो मुझे विषय दिया गया है वो है कि हिज फेल्योर इज नॉट फेल्योर हुम गॉड लीड्स। तो लक्ष्य क्या होना चाहिए इसको संक्षेप में तब हम लोग इस पर आ जाएंगे। एक होता है मुख्य लक्ष्य और दूसरा होता है उसके लिए छोटे छोटे लक्ष्य। जैसे आपका अगर मुख्य लक्ष्य है माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तो आपको उसके लिए पहले बहुत सारे पहाड़ आएंगे उस पर चढ़ना है, उसके पहले आपको स्टेमिना बिल्डअप करना है, उसके पहले आपको अपने मानसिक रूप से तैयार करना है। तो ये छोटे छोटे लक्ष्य जो हैं जो हमारे मेन लक्ष्य को फीड करते हैं और ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि कई बार मैंने देखा है लोग पढ़ते हैं कि योगा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन योगा ऑफ द सेल्स, सो सीधा वो वहाँ की हम माताजी की फोर्स इन्वोक करेंगे और हमारी सेल्स रूपांतरित हो रही हैं। ये बहुत डेंजरस टेंडेंसी है, माने स्वयं इसके बारे में कहा है, हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम 11 में भी इसकी बात है, कई जगहों पर है। ऐसे नहीं है कि योगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल्स स्ट्रेट अवे शुरू हो जाता है, कई स्टेप्स हैं उसमें, चैत्य सत्ता की खोज है, उसके लिए तैयारी है, बिकम कॉन्शियस, योग इज नॉट ए केक वॉक। तो ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि आजकल योग के नाम पर 10-day कोर्स इन निर्वाणा, एक जब पहली बार मैं अमेरिका गया था हो गए 25 साल, तो वहाँ पे वो बहुत आश्चर्य हुआ कि लिटरली 10-day कोर्स इन निर्वाणा बेस्ड ऑन सम डॉलर्स दैट यू गिव। तो मैंने कहा ये क्या होता है, मतलब 10 दिन, अब उसमें आपको टेक्निक सिखा दी जाती है। अब लोगों को अच्छा लगता है, अच्छा लगता है तो उनको लगता है यही निर्वाण है। अब कोई व्यक्ति को जब पता नहीं है कि असली हीरा क्या है तो उसको तो आप कोई भी डायमंड दे दोगे, कोई भी आर्टिफिशियल नागीना दे दोगे तो बहुत बाद में पता चलेगा कि इसका तो कोई मूल्य नहीं है और मैंने बहुत बड़ा मूल्य चुका दिया बिना मतलब के। तो ये पहले छोटे छोटे लक्ष्य हमको बड़े लक्ष्य तक ले जाते हैं। बड़ा लक्ष्य क्या होना चाहिए ये तो निश्चित है कि यदि ये सृष्टि भगवान की सृष्टि है तो भगवान ने कुछ ह्यूमन लैंग्वेज में सोचा होगा, कुछ पर्पस होगा, प्रयोजन होगा। अब भगवान के सामने क्या प्रयोजन हो सकता है, हाईएस्ट जो स्वयं है वो अपने ही जैसी सारी सृष्टि बने, एकदम लॉजिकल भी व्यक्ति अगर सोचे तो वो चीज स्पष्ट होती है। और एक कदम आगे जाऊंगा मैं कि माता पिता बच्चे के बारे में क्या सोचते हैं वो चाहते हैं कि मेरे से एक कदम आगे जाए। अब एक कदम आगे भगवान सृष्टि में कैसे करेंगे, भगवान फॉर्मलेस हैं, उनके अंदर बहुत सारी संभावनाएं लेकिन छिपी हैं, अभिव्यक्त नहीं हुई हैं। तो अभिव्यक्ति के द्वारा वास्तव में भगवान का भी विस्तार होता है, वृद्धि होती है। अब देखिए इसीलिए नाम जो अल्टीमेट रियलिटी का है ब्रह्मन, तो ब्रह्म जो एक्सपैंड कर वास्टनेस की तरफ जाता है, वृद्धि सेम रूट्स हैं। जैसे कि एक कवि जब कोई काव्य लिखता है तो अगर वो काव्य ना भी लिखे तो वो तो वही है, लेकिन काव्य के द्वारा पैराडॉक्सिकल है ये, लेकिन कवि की भी वृद्धि हो रही है अभिव्यक्ति के द्वारा, हालांकि वो ना लिखे तो भी वो वही है लेकिन वो इसके द्वारा अभिव्यक्त कर रहा है। तो लक्ष्य तो एक ही है इस संसार में, भगवान की अभिव्यक्ति। अब स्वाभाविक है उस अभिव्यक्ति के लिए हम लोग तैयार नहीं है, मनुष्य तैयार नहीं है। तो ये सारा जो अब तक ड्रामा हुआ है पशु पक्षी कीट पतंगे सब, फिर मनुष्य, मनुष्यों में कई श्रेणी के मनुष्य, धीरे धीरे सचेत होते हुए हम वहाँ पहुँचते हैं। प्रारंभ में भगवान क्या करते हैं, छोटे मोटे जैसे खिलौने दिए जाते हैं बच्चे को, हवाई जहाज चाहिए तो माँ क्या करती है बच्चे को हवाई जहाज ला देती, खिलौना। वो जानती है बच्चा ये नहीं कह रहा है कि मुझे एक्चुअल हवाई जहाज में बैठ के हवाई जहाज उड़ाना है। बचपन में डॉक्टर डॉक्टर भी खेलते थे हम लोग, वो चवन्नी का स्टेथोस्कोप लाके, तो ये सब क्योंकि इसके द्वारा हमारे अंदर चीज़ें डेवलप होती हैं। तो वैसे ही एक स्टेज होती है मनुष्य की जब वो खेल खिलौनों से खेलता है, वो भी तैयारी की स्टेज है। उसके बाद काफी सीढ़ियां लांग के वो एक जगह आता है जहां वो कहता है मैं हूं क्यों, मेरा क्या लक्ष्य है, क्या मुझे चाहिए। इसीलिए हम देखते हैं कि वेद और वेदांत में जो भेद आया, भेद नहीं है, वेदांत वहीं से कल्ड आउट है, लेकिन कर्म कांड और ज्ञान कांड का जो आया इसी कारण कि एक भौतिक लक्ष्य है और एक पारलौकिक लक्ष्य है, अति भौतिक लक्ष्य है। तो ये एक लंबी यात्रा के बाद हम लोग यहाँ पहुँचते हैं। तो ये लंबी यात्रा इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब हम ये कहते हैं एम ऑफ लाइफ, तो ये नहीं कि हम सबको एक ही एम बता दें। अब कोई बच्चा है, वो खिलौना खेलने की स्टेज है उसकी, आप उसको ले जाएंगे और उसको हवाई जहाज, एक्चुअल हवाई जहाज में बैठा देंगे तो इंटिमिडेट हो जाएगा। तो ये नहीं करना। ये श्री कृष्ण बड़े प्यार से समझाते हैं कि जो जानते हैं उनको बुद्धि भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ छोटे बच्चे की हमारा लक्ष्य है डिवाइन। अब वो ठीक है, लेकिन अब डिवाइन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिवाइन, तो हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से, तो एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस को जानना जरूरी है। मतलब हर व्यक्ति के अंदर ये लक्ष्य, ये अपने आप उदय होगा, ये बाहर से किसी के द्वारा मेंटली थोपा हुआ विषय नहीं है कि आप सबका लक्ष्य ही होना चाहिए। एक है, लेकिन एक लंबे समय तक वो प्रत्यक्ष नहीं होता, परोक्ष रूप से चलता है। इसी को सबकॉन्शियस योग कहा गया। ऑल लाइफ इज योगा के दो हिस्से, हम लोग उसी तरफ जा रहे हैं। क्यों? हम जीवन में क्या ढूंढ रहे हैं? परफेक्शन। एक शब्द में हमारे परफेक्शन के मापदंड अलग हैं। कोई समझता है मेरे जीवन में अगर बहुत धन दौलत हो, सब कुछ हो, घर परिवार सब सुखी हो, तो परफेक्शन है। लेकिन एक शब्द में अगर बोलो तो क्या चाह रहा है, तो पूर्णता, यही बोलेगा। उस पूरी लिस्ट बना देगा, मैं स्वस्थ रहूं, परिवार भी स्वस्थ रहे, धन भी रहे, घर भी, सब उसका जो आइडिया है परफेक्शन का, जिसको कहते हैं मंडेन परफेक्शन। फिर आता है दूसरा परफेक्शन, रिलीजियस परफेक्शन। फिर आता है स्पिरिचुअल परफेक्शन। फिर आता है सुपरमेंटल परफेक्शन। अभी मैं इसमें डिफाइन, लेकिन परफेक्शन ये एक गोल है। जिन लोगों को डिवाइन या मैनिफेस्टेशन इन शब्दों से डर लगता है, या जो तैयार नहीं है, उनके लिए क्या गोल होना चाहिए? माने बड़े स्पष्ट ढंग से कहा है, प्रोग्रेस टुवर्ड्स परफेक्शन। क्योंकि दो तरह की प्रोग्रेस है, एक हॉरिजॉन्टल है जिसमें क्या है, क्वांटिटी, मेरे पास इतना धन है और आ जाए, एक तरह की प्रोग्रेस है, वृद्धि है। मेरे पास एक घर है, दो घर आ जाए, एक गाड़ी है, बेटर गाड़ी आ जाए, ये एक है। लेकिन प्रोग्रेस टुवर्ड्स परफेक्शन मतलब मेरे जीवन में मेरी विधाओं का विकास, स्वास्थ्य, उसमें विकास का कंसेप्ट है। परफेक्शन बाय इट्स नेचर इम्प्लाइज इवोल्यूशन, डेवलपमेंट, एजुकेशन, ये सब है, वेर इज प्रोग्रेस टुवर्ड्स परफेक्शन। तो ये एक जनरल गोल मनुष्य के अंदर सदैव चलना चाहिए। मुझे लगता है कि चाहे कोई भगवान को माने ना माने, शेरविंद माता जी को जानता है या नहीं जानता है, प्रगति एक ऐसा लक्ष्य है, विकास एक ऐसा लक्ष्य है जो कॉन्स्टेंट होना चाहिए। मान भी लिया, मान लो कि हम माता जी को मानते हैं, श्री अरविंद को मानते हैं, और आप वहीं पर रुक गए, आप प्रोग्रेस की तरफ नहीं बढ़ रहे, आप खुश हो गए कि मैं आश्रम में आ गया, या मैं अब एक ही रंग का कपड़ा पहनता हूँ, केवल वेजिटेरियन फूड खाता हूँ, रोज सेंटर में जाता हूँ, प्रणाम करता हूँ, दो घंटे चार घंटे सेवा देता हूँ। तो ये सब बेसलाइन है, और इस प्रोग्रेस का कोई अंत नहीं है, और वो आपको यंग रखता है, जॉय देता है। क्योंकि जो चीज़ प्रोग्रेस नहीं करती है, मनुष्य के साथ ये नियम है, खासकर पशु पक्षी स्टैटिक हैं, देवता भी स्टैटिक हैं, मनुष्य के अंदर भगवान ने प्रोग्रेस का सॉफ्टवेयर डाला हुआ है। तो मनुष्य के साथ क्या होता है कि यदि वो प्रोग्रेस नहीं करता है तो वो डिक्लाइन करता है, उसके पास दो अल्टरनेटिव है नहीं, वो देर तक एक जगह रेस्ट नहीं कर सकता है, और करेगा तो वो उसकी तरह हो जाएगा, सरोवर की तरह जो सूख रहा है, वो अपने अंदर स्टाइफिल फील करने लगा है। कई लोगों के अंदर ये अंदर अंदर कुछ घुटन सी महसूस होती है, क्योंकि ये प्रगति नहीं कर रहे हैं। कैसे भी प्रगति करने का अनेकों उपाय है। तो प्रगति, और प्रगति में हम लोग अगर परफेक्शन, पूर्णता की ओर, तो और भी अच्छा, और परफेक्शन के पहले हम अगर डिवाइन परफेक्शन, दिव्य परिपूर्णता, तो वो अद्भुत है। और दिव्य परिपूर्णता की तरफ प्रगति में एक और चीज लगा दें, मेरे व्यक्तिगत के लिए नहीं, संसार के लिए, समाज के लिए, विश्व के लिए, तो और भी अद्भुत है। और उसमें अगर ये जोड़ दें, वो भी किस लिए? इसलिए नहीं कि मेरी इच्छा है, इसलिए कि यही भगवान का संकल्प है इस सृष्टि में। तो इट मेक्स ए कंप्लीट aim of life. To progress, to strive towards divine perfection here upon earth. क्योंकि अंदर जाके divine perfection को लोगों ने realize किया है, लेकिन manifest नहीं हुआ ना. So here upon earth. ऐसे लोग हैं जहाँ वो manifested है. अब कैलाश में तो लड़ाई नहीं होती ना सांप की और चूहे की और कार्तिकेय का वाहन मोर की, नहीं लड़ाई होती है, वो परफेक्शन है. लेकिन वहाँ है, यहाँ तो दो पक्षियों की लड़ाई हो जाएगी अगर मनुष्य का रूप ले ले तो. तो डिवाइन परफेक्शन, भगवान की परिपूर्णता यहाँ. और किस लिए? क्योंकि यही सृष्टि का आदि संकल्प है. अब यहां से ये दूसरा भाग शुरू होता है कि फेल्योर की बात. अब फेल्योर कहां से आ रहा है? क्योंकि यहां पर ये टॉपिक ये नहीं है कि फेल्योर, उस पर तो बहुत चर्चा हो सकती है. वास्तव में फेल्योर कुछ भी नहीं होती है, ये तो मान के हमको चलना चाहिए. फेल्योर क्या होती है? जब आप गिव अप कर देते हो गोल को, वरना वो प्रिपरेशन है. लोग कहेंगे आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, हमने तो 6 साल ट्राई किया था मेडिकल एंट्रेंस का, नहीं हुआ हमारा, तो फेल्योर हो गया. मैं पूछता हूँ कि फेल्योर हुआ? हाँ, हमारा तो सिलेक्शन नहीं हुआ. तो मैं पूछता हूँ कि देखो तुम्हारे अंदर 6 सालों में जो तुमने पढ़ाई करी, तैयारी करी, क्या तुम्हारा कोई भी पार्ट विकसित नहीं हुआ? अब देखिए, कंसंट्रेशन विकसित हुआ, मेंटल कैपेसिटीज बढ़ी आपकी, आपने कई चीज़ों के बारे में जाना जो आप अदरवाइज नहीं जानते. और अब ये जब जान के आप, ये जो आपके अंदर ये ऊर्जा बढ़ी, मन की ऊर्जा, इसको आप कहीं और लगा सकते हो. नहीं इधर लगा पाए तो कहीं और लगा सकते हो, लेकिन विकास तो हुआ ही हुआ. तो अगर हम विकास को लक्ष्य लगा लें तो कुछ भी फेल्योर नहीं है. धन अर्जन कर रहा है व्यक्ति, बिजनेस करता है, ये वर्कआउट नहीं करता है, वो वर्कआउट नहीं करता है, लेकिन क्या हो रहा है? कोई चीज है आपके अंदर जो विकसित हो रही है. लोगों से डील, हम कॉन्शियस होते हैं, अवेयर होते हैं जीवन में, जिसको कहते हैं ना साधारण भाषा में कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, भूलों से सीखते हैं, गिर के हम चलना सीखते हैं. बच्चा तो पहले गिरता है ना. अब ये कि कुछ लोग जल्दी सीखते हैं, कुछ को बार बार गिरना पड़ता है, पर सब सीखते हैं. तो फेल्योर का कंसेप्ट बहुत ही एक इमीडिएट सेंस में होता है. फेल्योर वस्तुतः फेल्योर ये नहीं होती है कुछ भी, क्योंकि वस्तुतः ये जिसको हम मटेरियल सक्सेस या वर्ल्डली सक्सेस, ये तो लक्ष्य ही नहीं था. ये हमको दिया गया, टेम्पररीली दिया गया मनुष्य के अंदर प्रकृति ने, लेकिन लक्ष्य तो कुछ और था. और ये सब कुछ उस रास्ते में तैयार कर रहा है. तो इसकी बहुत सारी कहानियाँ हैं. एक कहानी है कि एक व्यक्ति को काम दिया गया कि तुम जाओ घड़ा भर करके, पूरा भरा भरा घड़ा मेरे पास ले आओ. गुरुजी ने काम दिया शिष्य को, तो शिष्य ने कहा इतना सा काम है? ठीक है. तो गया लाने, अब घड़े के अंदर छेद थे. तो अब वो जाए भरे आए. अब पहले तो उसने कहा नहीं नहीं इतना कुछ पानी नहीं गिरेगा, हाथ रख दूंगा. लेकिन पानी गिरा, भरा हुआ घड़ा नहीं आया. तो उन्होंने कहा फिर जाओ. अब उसने देखा कि मैं इसको कैसे सील करूं, और थोड़ी अपनी गति बढ़ाई, फिर और गति बढ़ाई, क्योंकि अब क्या करेगा व्यक्ति, घड़ा नहीं चेंज कर सकते हो. अंत में 30 बार के बाद बोला कि मैं विफल हो गया. तब गुरुजी ने कहा नहीं, ये तो काम तुम्हें सौंपा गया था तुम्हारे एक प्रगति के लिए. तो भी विफल, क्या प्रगति हुई? कहे देखो तुम्हारा स्टेमिना बढ़ा. हाँ, भागना सीख लिया मैंने, कंसंट्रेशन भी सीखा. नीचे से गिर रहा है लेकिन ऊपर से नहीं छलके, कम से कम जहां भी मैं रोक सकूं. और तीसरी चीज उन्होंने कहा देखो क्यारी को देखो, रास्ते में कुछ दिख रहा है? तुमने ये वाटरिंग की है आसपास जो फूल पत्ती थी, तो ये वाटर देम. तो ये वेस्ट, फेल्योर, एरर, ह्यूमन कंसेप्ट्स हैं. इनकी आवश्यकता है एक स्टेज पर इनको हमको अंतिम सत्य नहीं समझना चाहिए. ये तो एक जनरल चीज को हम लोग मान के चलें. और ये फेल्योर इनएविटेबल हैं मनुष्य के जीवन में, क्योंकि हम अज्ञान से शुरुआत असदो मा सद्गम्या. तो कोई ये मान के थोड़ी कि भाई आप सिद्ध हो. किसी ने शेरविन से पूछा कि आश्रम में तो हमने देखे हैं कि ऐसे भी लोग हैं वैसे भी लोग हैं, तो शेरविन कहते हैं भाई देखो आश्रम में सिद्ध नहीं, साधक हैं. जो सिद्ध है उसको आवश्यकता नहीं है कहीं भी जाने की. साधक हैं, फिर धीरे धीरे वो, तो ये भी पूछा कि फिर क्या अंतर है, कहते अंतर है बाहर में आप रह रहे हो और वही जीवन अगर चल रहा है, और यहाँ भी अगर रह रहे हो और जीवन में वही आपके जो दोष हैं और समस्याएं हैं, कहते लेकिन बाहर आप उसमें और उलझते जा रहे हो क्योंकि आपका लक्ष्य तो नहीं है कुछ, और यहां जब आ रहे हो तो आप उलझन से सुलझने की ओर जा रहे हो, देखने से बाहर आपको नहीं समझ आ रहा है लेकिन वो सुलझन की ओर, सुलझने की ओर जा रहा है। तो ये एक चीज हमको समझनी है कि जब कोई भी यात्रा है हमारे जीवन की तो वो धीरे धीरे चलती है, भगवान बहुत पेशेंस के साथ कार्य करते हैं, जल्दबाजी में नहीं करते हैं, बहुत कुछ है हमारे अंदर जो हम हमसे छिपा हुआ है उसको उगाड़ते हैं, निकालते हैं, उसमें कुछ चीज़ें डिस्कार्ड होती हैं, ज़्यादातर नहीं करते हैं डिस्कार्ड, इवन वो मटेरियल जिसको हम बड़ा भद्दा समझते थे वो भगवान उसको भी यूज़ करते हैं, तो उसको शेप करते हैं, रीशेप करते हैं, तो एक लंबी प्रोसेस है। इसलिए यदि कोई पेशेंट नहीं है तो योग उसके लिए नहीं है। फिर वही बात पर हम लोग आते हैं कि ये 10 दिन $1,000 का कोर्स नहीं है, लोग हर चीज़ करते हैं आजकल इसके नाम पर, योगा ऑफ द सेल्स करते हैं, ना जाने क्या क्या करते हैं, ये मान के चलें एक लंबी यात्रा है, ये आप पैसे दे के ये कोर्स नहीं कर सकते हैं। बल्कि शेरविन ने यहाँ तक लिखा है योगा कभी क्लासरूम टीचिंग में नहीं होती है कि भाई सिखाए हुए तरीके से स्टेप वन स्टेप टू, ये एक जनरल अनफोल्डिंग है स्पिरिचुअल लाइफ। इसमें एक बात और मैं जोड़ दूँ, लोग कहते हैं ये गुरु वो गुरु, इसके पास उसके पास, हमारे गुरु बेटर हैं, वो भी ये बात कह रहे हैं, तो कई बार मैं उनको बताता हूँ कि आप जो गुरुओं का कंपैरिजन कर रहे हो, भाई स्पिरिचुअल लाइफ कोई कॉलेज की डिग्री नहीं है कि आप प्राप्त करेंगे तो आप देख रहे हैं कॉलेज कौन सा बेटर है। तो कहते हैं फिर स्पिरिचुअल लाइफ क्या है, स्पिरिचुअल लाइफ अनफोल्डिंग है, वो जो आपके अंदर बीज है वो उगने वाला है, आप किसी के अंदर वो बीज वटवृक्ष का बीज है, किसी के अंदर रोज का बीज है, ये दोनों एक तरह से नहीं होंगे। इवन अगर एक ही मास्टर के पास जाएंगे तो उनके पथ अलग होंगे, अनफोल्डिंग है, रियल मास्टर है। कोई भी मास्टर अगर आपको स्टैंडर्डाइज टेक्निक बता रहा है तो मैं तो आउटराइट कि भाई ही डजंट अंडरस्टैंड। श्री कृष्ण और श्री अरविंद जिनको मैं अल्टीमेट यार्डस्टिक, कोई स्टैंडर्डाइज टेक्निक नहीं कहते हैं, वो एटीट्यूड्स की बात करते हैं, हमारे समता का अभ्यास करो, समता का विकास करो, निष्काम कर्म करो। एक मेथड कुछ श्लोकों में बताते हैं थोड़ा सा, वो भी एज ए कंसेशन की नासिका के अग्रभाग में, अदरवाइज दे डोंट मच टॉक अबाउट इट, क्योंकि अनफोल्डिंग है, बीज अंदर में है, उसको उगने के लिए क्या चाहिए, ओपन टू द मदर, पुट वाटर। कई बार लोग इससे परेशान भी होते हैं कि नहीं हमको कुछ मेथड दो, तो मेथड भी दे दिया श्री अरविंद ने, देर इज नो मेथड इन दिस योगा एक्सेप्ट टू टेक द मदर्स नेम एंड माइंड। अच्छा चलो मेथड चाहिए, हो गया मेथड, श्री अरविंद शरणम मा 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 मा, ये दे दिया मेथड। अब उसको भी लोग मैकेनिकल टर्न कर देते कि हम बस माँ का नाम करते रहेंगे, ये नहीं मतलब है उसका। मनुष्य को एक बाहरी प्रोसेस चाहिए तो ये बाहरी प्रोसेस, लेकिन अंदर की चीज़ों से आप, ये नहीं कि मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे समता का अभ्यास नहीं करना है, ईगो पर काबू नहीं रखना है, अंकुश नहीं लगाना है, कामनाओं को मैं जैसे चाहूँ चलाऊँ, मन के अंदर प्रकाश ना लाऊं, विशालता ना लाऊं, ये इट डजेंट वर्क लाइक दैट, वो आपको करना ही करना है। तो इस प्रकार से स्पिरिचुअल लाइफ एक अनफोल्डिंग है और वो अनेकों प्रकार से होती है। ये श्री अरविंद आश्रम की बड़ी विशेषता है, श्री अरविंद माता जी के योग की, कि यहाँ कोई एक रिलीजियस मेथड नहीं है कि सबको आके बैठा दिया पंडाल में, आज एक बताया जाएगा क्या करना है, सब अपना चेतना को यहाँ केंद्रित करिए, देखिए कुंडलिनी जागृत हो रही है, हृदय के अंदर जा रहे हैं, वहां पर आपको चैत्य सत्ता मिल रही है, इट इज नॉट डन लाइक दैट। और ये करना, इसको समाप्त कर देना है वास्तव में, इसके जॉय को खत्म कर देना है एक्चुअली। अगर आप देखें अनफोल्डिंग का जॉय है, क्योंकि भगवान हमको कितने ढंग से मिलते हैं, कभी कभी आप बस सोच रहे हो कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, एक किताब आ जाती है, एक वाक्य सुन लेते हैं, अरे वाह माता। अब देखिए जॉय ऑफ डिस्कवरी जो खत्म हो जाती है जब आपको बस ये लग रहा है कि उस समय जब मैं वहां बैठा हूं मेडिटेट कर रहा हूं तो मुझे कुछ मिल रहा है, तो सारे दिन जो मिल रहा है वो आप नहीं देख पाते हैं क्योंकि आपने अपना फोकस बस। सो ये जो बात हो रही है ये योग की, ये धीर होना बहुत जरूरी है। एक ही शब्द उपनिषद यूज करती है, तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा, बहुत धीर, धीर मतलब पेशेंट, परसीवरेंस, माँ यहाँ तक कहती हैं, इफ यू आर नॉट रेडी टू परसीवर, इफ यू आर नॉट पेशेंट, डोंट टेक अप योगा. ये रेस्टलेस लोगों की चीज नहीं है. अगर रेस्टलेस व्यक्ति इसमें आ जाए तो पहले उसको भगवान इतना ही सिखाते हैं, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ. निष्काम कर्म क्या करते हैं? शांत करते हैं. ये नहीं कि यू आर नॉट अलाउड, एस्पिरेशन है आगे, पर पहले ये सीखो. सीधा आपने साइन अप कर लिया एक कोर्स के लिए कि हम सीधा सेल्स को इल्यूमिन करेंगे. देखिए कितनी भ्रांति में लोग जा सकते हैं, क्योंकि आपका अधिकार भेद इतना इंपॉर्टेंट था. खैर, अब आता है कि फिर फेल्योर कहाँ से आता है. तो फेल्योर, वस्तुतः फेल्योर कुछ नहीं होती है, लेकिन गिरना और उठना होता है, वो स्वाभाविक है. और जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतना अधिक चांस है कि आप गिरेंगे, फेल करेंगे. बार बार मैं इस बात को कहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है. ये एक श्लोक कह रहा हूँ लेकिन संस्कृत, सॉरी उर्दू का शेर है. तो एक सूफी संत कहते हैं, गिरते हैं सह सवार ही मैदान जंग में, बुझ दिल वो क्या गिरे जो घुटनों के बल चले. अब कौन गिरता है, किसको मृत्यु आ सकती है? जो युद्ध लड़ रहा है, जो कावड़ की तरह घर के अंदर बैठा हुआ है, हम कभी नहीं गिरे. अरे आप तो निकले ही नहीं. हमने कभी भूल नहीं की, नेचुरली आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला में चलते रहे. हम कभी मार्ग नहीं भटके, आपका मार्ग तो मस्जिद से मुहाने तक था. आप भटकेंगे कहाँ? शायद भटकते तो आप एक विशालता में भगवान को पाते, भटके नहीं तो आपने भगवान को भी सीमित कर दिया. कहने का अर्थ ये बहुत विशाल लैंडस्केप पर योग चलता है, इसको मॉरलिस्ट नहीं समझ सकते. ये भी माँ ने कहा है कि इट इज बियॉन्ड स्पिरिचुअलिटी, इज बियॉन्ड मॉरेलिटी. ये बहुत कठिन होता है लोगों को समझना कि व्हाट इज बियॉन्ड मॉरेलिटी, व्हाट इज बियॉन्ड गुड एंड ईविल, व्हाट इज बियॉन्ड राइट एंड रॉन्ग. तो व्हाट इज बियॉन्ड राइट एंड रॉन्ग, बियॉन्ड गुड एंड ईविल इज गॉड. तो क्या फिर हम सब कुछ ताक पर रख दे? नहीं, ये नहीं कहा जा रहा है. तो एक जो स्पिरिचुअल व्यक्ति वो कैसे जीवन को नेविगेट करता है, अगर राइट और रॉन्ग का कंसेप्ट नहीं है? वो डिसर्न करता है कि कौन सी चीज मुझे भगवान के करीब ले जा रही है, कौन सी चीज दूर ले जाए, बस इतना ही है. कोई उसके पास मेंटल यार्डस्टिक नहीं है. कभी परिवार से वो जुड़ा रहता है और उसमें जो कुछ सीखता है, परिवार भी बहुत कुछ सिखाता है. बच्चे सिखाते हैं धीरज रखना, वाइफ सिखाती है विनम्र होना, पति सिखाता है कि क्या नहीं होना चाहिए. तो ये सब सीखता है ना व्यक्ति कुछ ना कुछ. ये एलिमेंट्री स्कूलिंग है. पर अब बोलोगे सारे जीवन में इसी एलिमेंट्री स्कूल को सीखता रहूंगा, तो एक समय आता है जब आप परिवार में रहते हुए भी परिवार के ऊपर हो जाते हो अंदर में, वो भी जरूरी है. फिर एक समय आता है आप किसी ग्रुप से बनते हो और आप ग्रुप लाइफ से आइडेंटिफाई करते हो. आश्रम से भी लोग एक ईगो के रूप में जुड़ सकते हैं, हम आश्रमाइट हैं, एक ग्रुप है इसमें कोई, ये होता है. शेरविंद ने इसके प्रति सचेत किया है और ह्यूमन साइकिल में है ये. अब ग्रुप से भी हम कलेक्टिव ईगो आ जाती है. और एक समय आता है, वो भी जरूरी होता है, एक समय आपको एक म्यूचुअलिटी का एक पोषण करती है. फिर एक समय आता है जब आप सब चीज से आगे बढ़ जाते हो, तब आप केवल और केवल सर्वभुवन में उस एक डिवाइन मदर से हर परिस्थिति में हर अवस्था में. नेचुरली आप कहीं रहोगे, वो सीट है आपको दी गई है, वो जगह और काम, लेकिन आप उससे ईगोइस्टिकली नहीं बंधे होते हो कि मैं आश्रमाइट हूँ, ध्यान रखना, हाँ मैं विशेष व्यक्ति हूँ, एलिट क्लब का एक विशेष सदस्य हूँ. ऐसा नहीं भाव रहेगा कि भाई योग तो केवल यही हो रहा है. ये सब भाव चले जाएंगे क्योंकि आप सारी सृष्टि में भगवान के कार्य को देखोगे. हाँ ये विशेष जगह है, ये नहीं कि आप, पर उस विशेष जगह का किस तरह से हम कनेक्ट करते हैं ये देखने लगोगे. वहां भी अहंकार आ सकता है. जय विजय वैकुंठ में है, अहंकार आता है, ऐसा भयंकर अहंकार होता है कि पतन होता है. तो मुख्य चीज है ये गिरना उठना इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे हिस्से हैं, सब तैयार नहीं होते हैं योग के लिए. एक पार्ट रेडी होता है, वो चलता है, वो लीप करता है. कुछ इस तरह की चीज होती है कि लोगों ने कहा कि भाई सॉरी कुंभ चलना है, महाकुंभ हो रहा है, हाँ चलो चलो चलो। अब क्या होता है ना, बहुत से लोग एक जोश में, अब कुछ लोगों को इसलिए भी जाना पड़ता है कि ये जोशीला व्यक्ति जो जा रहा है ये परेशान हो जाएगा, तो आप कुंभ के लिए नहीं जा रहे हो, उसको लगाम बन के कि भाई ये खो ना जाए, क्योंकि कुंभ मेले की दो बातें हैं, एक तो या तो आप मुक्त हो जाते हो बंधनों से, लेकिन दूसरे कभी कभी परिवार के बंधनों से भी मुक्त हो जाते, बिछुड़ जाते हो। हमारे फिल्मों ने बिगाड़ दिया है कुंभ का पूरा मतलब, वो जितने खोए हुए बच्चे कुंभ में मेले में जाके बाद मिलते हैं। तो कुछ लोग केवल इसलिए जाते हैं कि भाई ये जो घोड़े हैं इनको थोड़ा संभाल के चलो, नहीं तो ये तो पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। पर अर्थ ये कि जोश में आदमी कई बार कहता है ठीक है, फिर जैसे जैसे दिन करीब आते हैं ठंड कितनी होगी, अरेंजमेंट कैसा होगा, भीड़ कितनी होगी, कितना चलना पड़ेगा, कहाँ क्या सुविधा होगी। अच्छा पहले नहीं सोचा, पहले ये था कि चलते हैं। अभी इसमें कुछ लोग हैं जो इन सबको दरकिनार करके अपनी सेंट्रल उसको पकड़ लेते हैं, नहीं जाना है जो भी हो जाए जाना है, फिर वो चले जाते हैं और सब हो जाता है उनका, क्योंकि उन्होंने इसको पकड़ा हुआ है। अब बाकी हिस्से अपने आप एडजस्ट करते रहते हैं, ट्यून करते रहते हैं। और कैसे ट्यून करते हैं, कई बार अभी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले कि बाहर जाते हैं कहीं पर, खाने का क्या मिलता है, ट्रैवल है, लंबी ट्रैवल है, कठिनाई कष्ट है। अब ये ना ये सब आप सोचोगे तो काम नहीं कर सकते हो, तो ये चीज़ें एडजस्ट होती जाती हैं अपने आप। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान किस पर है, माँ की सेवा करनी है, बस पीरियड। तो ये सारे पार्ट अपने आप धीरे धीरे, और समता, समता ही तो मुक्ति है। अगर हम देखें तो गीता की परिभाषा में एक लेवल की मुक्ति क्या है, समत्व योग उच्चते। एक इमीजिएट लक्ष्य रखना चाहिए, पहली चीज जो श्री अरविंद, काम पीस इक्वानिमिटी। पतंजलि ऋषि जी ने तो ये तक कह दिया कि भाई समता में तुम प्रवेश कर गए। तो समता लाने का एक बड़ा सिंपल है कि आप लक्ष्य रख लीजिए, चलते जाइए। वही जो कुछ देर पहले ये भी बात हो रही थी कि आप भीड़ में, दुनिया, लोग कहते हैं अरे इंसान दुनिया में उलझा हुआ है, तो दुनिया में आप उलझे हैं तो आप भीड़ में अगर पकड़े हुए हैं चारों तरफ से, ये तो मैंने एक्चुअली एक्सपीरियंस किया है नई दिल्ली प्लेटफॉर्म पर, इतने सारे इधर उधर अचानक, तब आप क्या करोगे? आपको बस दो चीजों का ध्यान रखना है, आपको किधर जाना है, स्टेयर केस कहाँ है, सीढ़ी कहाँ है ऊपर चढ़ के, और दूसरा वो जो कुली जा रहा है सामान उसको मिस मत करिएगा। और अपना सामान आपके साथ है तो बहुत ही अच्छा है, खुद ही कुली बन जाइए। इसलिए योग में बहुत सारे लोग को जोड़ के कि भैया तुम मेरा सामान ले लो, ऐसे नहीं होता है, कैरी योर ओन बैगेज, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होती है। पर आपको मुख्य चीज ये याद रखनी है आपको कहाँ जाना है। ये मिस आउट अगर हो गया, अगर आप इस एनालिसिस में पड़ गए कि भैया बहुत भीड़ है मैं नहीं जा सकता हूँ, अरे भैया इसमें ये तो कैसे लोग हैं, कहाँ हैं, किससे टच हो रहा है, किसकी स्मेल आ रही है, योग कैन नॉट बी डन लाइक दैट। तो इसलिए समता, एक इमीडिएट गोल, लक्ष्य। अब उसमें फेल्योर आएगी, कभी कभी भीड़ का रेला आपको अपोजिट डायरेक्शन में डाल देगा, आपको लगेगा कि एक कदम आगे जा रहा था चार कदम पीछे आ गया, कोई बात नहीं है, करना क्या है, मुड़िए फिर से चलिए, लक्ष्य को विस्मृत मत होने दीजिए, होगा ऐसा। श्री अरविंद कहते हैं निरोधा को, कहते हैं कि मैं ये गिरने की कुछ प्रश्न मैं भूल रहा हूँ, बट इट हैड समथिंग टू डू विद फॉल। तो श्री अरविंद कहते हैं तो क्या बात हुई, बच्चा रस्ते में गिर जाता है तो माँ क्या कहती है, रो रहा है, कलप रहा है, कहते अरे उठो, पैंट को झाड़ो, आगे चलो, ब्रश योर पैंट्स एंड मूव फॉरवर्ड। तो ये गिरना, हम लोग की समस्या क्या होती है, हम उस घटना को पकड़ के बैठ जाते हैं, मानो ये अंत है, अंत नहीं है। बहुत तो मैंने देखा है वो कब की पास्ट को पकड़ करके, आज वो मेरे जीवन में घटना नहीं होती तो आज मैं वहां होता है, ने कहा दोनों तो कल्पना में तुम जी रहे हो। तुम्हें कैसे मालूम है कि ये वो घटना पूर्व निर्धारित नहीं थी तुम्हारे अंदर कोई कार्य, कोई पार्ट को विकास के लिए? आप तो ये योग को एक मॉरल डॉक्ट्रिन बना रहे हो, ये प्रोसेस है। हाँ, अगर आप उससे जुड़ गए, चिपक गए, उसको रोने लगे, बिलखने लगे, कंप्लेंट करने लगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो आप भूल कर रहे हो। तो इसीलिए अब वो पंक्ति है, हिज फेल्योर इज नॉट फेल्योर होम गॉड लीड्स। तो इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि यदि आपने बागडोर भगवान के हाथ में दे दी है, अब ये यदि है दिए कि नहीं, तो वो हर फेल्योर के द्वार से भगवान उसको आगे ले जाएंगे और वो द्वार बनेगा आगे बढ़ने का। आप देखिए हर बार जब ये योग में माता जी बताती हैं, जब प्रगति करनी होती है तो एक टेस्ट के रूप में कोई चीज आती है, कहती है एवरी टाइम यू हैव टू मेक ए प्रोग्रेस देयर इज अ टेस्ट। और वो टेस्ट कौन कौन सी फोर्सेस करती हैं, एडवर्स फोर्सेस, वो आपको ऐसे बताएंगी कि भाई ये संभव नहीं है, या छलावा करेंगी, आपको ऐसा लगेगा कि प्रगति हो रही है लेकिन वास्तव में वो प्रगति का मार्ग नहीं है, जो भी है कई तरीके होते हैं शद्म, या आपको कहेंगी तुम फिट नहीं हो वास्तव में, वो गिरा देंगी आपको, उसके बाद वो नहीं देखा मैंने कहा था ना तुम तो फिट ही नहीं हो योग के लिए, देखो तुम्हारे अंदर कितनी कमजोरियां हैं, वीकनेसेस हैं, ये एडवर्स फोर्सेस करती हैं। दूसरा भौतिक प्रकृति की शक्तियां, भौतिक प्रकृति की शक्तियां क्या कहती, कहते हैं भाई कुछ शाम से नहीं कंट्रोल होगा, काम क्रोध लोभ ये हमसे नहीं कंट्रोल होगा, भय हमसे नहीं मैनेज होगा, अटैचमेंट तो हमारी मतलब खून में है ये सब चीजें। लेकिन शेरविंद कहते हैं यदि तुम्हारे अंदर एस्पिरेशन है और माँ की ओर खुले हो, तो यहां तक कहते हैं मैन में हैव सीरियस डिफेक्ट्स एंड डिफिकल्टीज, ही में बी फुल ऑफ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, दिस प्रॉब्लम दैट प्रॉब्लम, येट ही विल गो थ्रू। क्यों? क्योंकि वो खुला हुआ है, उसको विश्वास है कि मेरे हमारे एफर्ट पर नहीं पर माँ की कृपा के ऊपर। और ये देखा है मैंने कैसे कैसे लोगों कैसी कैसी डिफिकल्टीज, आप जब इंटरेक्ट करते हैं इस फील्ड में लोगों से तब पता चलता है, और कैसे कैसे भगवान ले गए जब माँ की ग्रेस है कि ऐसे लोगों से, क्योंकि नॉर्मली जो इंटरव्यू होते हैं ना उस पर मत जाइए, वो बड़े सैनिटाइज्ड हैं, कोई भी व्यक्ति इंटरव्यू पे ये नहीं बताता है कि मेरे साथ ये बड़ी बड़ी बहुत बड़ी भूल हुई, मैंने ये गलती कर दी, गिर गया, कोई नहीं बताता है, सब अपनी एक बड़ी मुझे ये अनुभव हुआ, मुझे वो अनुभव हुआ, बहुत सुंदर ये चीज़ हुई। तो लोगों को कई बार लगता है भैया इसको तो ये सब अनुभव हुआ, हमें तो हुआ नहीं। हर अनुभव के पहले वो कैसे गिरा है ये आपको वो नहीं बता रहा है, वो अगर आप क्लोजली किसी के जीवन के साथ जुड़ोगे और वो मित्रता वो शेयर करेगा कि चीज़ें होती हैं, योग की यात्रा सरल नहीं होती, कठिन है, और ये बहुत कठिन योग है, इसलिए श्री कहते हैं बी प्रिपेयर्ड, कठिन योग है। तो जैसे ये टेस्ट आते हैं यूनिवर्सल नेचर की, कहती हैं असंभव है, तब आपको क्या कहना है, हाँ मेरे लिए हो सकता है लेकिन डिवाइन मदर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। फिर होस्टाइल फोर्सेज आती हैं, ये तो पूरा का पूरा माइंड को वैनिटी, खासकर मैं योगी हूं, साधक हूं, बहुत बड़ा हूं, सबसे अलग हूं, तो धीरे धीरे आपके अंदर कब्जा करके वैनिटी, क्या बोलते हैं वैनिटी को, मिथ्या अभिमान, एक होता है अभिमान जो आपका एक उसका लॉजिक होता है, भाई किसी ने कुछ अचीव किया है उसको अभिमान होता है, अच्छी चीज नहीं है ये भी योग के पॉइंट ऑफ व्यू से। मिथ्याभिमान है वैनिटी, जहां कुछ भी नहीं है आपको लेकिन ये लग रहा है कि आप बहुत बड़े हो, महान व्यक्ति हो, वैसे ये भाव तो नहीं होना चाहिए फ्रेंकली, क्योंकि महान केवल एक ही है और जो भी किसी के अंदर कुछ महानता है उसी का एक अंश है। तो मिथ्याभिमान वैनिटी, ये भ्रम वो पाल लेते हैं लोग, और फिर उस दिखावा करते हैं बाहर से, बड़े साधक की तरह वो लगने लगते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं यस व्हाट इज इट, तो आप सुनने वाला भी गान गंभीर पता नहीं बाबा जी बोल रहे हैं कुछ भी, मतलब उनकी चेष्टाएं, उनकी दाढ़ी वेशभूषा, वन इज नॉट रियलाइजिंग कि आप एक फॉल्सूट के उसमें गुरु गुरुडम, लोग अपने पांव छुआने लगते हैं, गुरु बन जाते हैं पांव के दर्शन। एक है कि स्पॉन्टेनियसली भारतवर्ष में एक कल्चर है कि कई बार लोग पांव छू लेते हैं, आप मना कर रहे हो तो भी बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन ये शुरू हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है कि आप भगवान के रास्ते में किस चीज के अंदर चले गए, उलझ गए हो कि आई एम समवन ग्रेट फॉर वट एवर रीजन, ग्रेट बिकॉज आई एम स्पीकिंग, ग्रेट बिकॉज मैंने कभी टॉक नहीं दी, ग्रेट बिकॉज मैं दुनिया जहां जा रहा हूं, ग्रेट बिकॉज मैंने छोड़ा नहीं कभी भी आश्रम को। ये देखिए वैनिटी तो आपकी कहीं भी आ सकती है, ग्रेट बिकॉज मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूं, ग्रेट बिकॉज देखो मैं कितना छोटे से छोटा काम कर रहा हूं. वैनिटी इज सच ए, मतलब ईगो के ऐसे खेल हैं, हंसी आती है देख के. तो वो होस्टाइल फोर्सेस वैनिटी के थ्रू, फिर उसके बाद वो खूब एबनॉर्मल डिप्रेशन बाद में हिट बैक करती हैं. और जहाँ वैनिटी है वो कहते हैं ना नेमेसिस फॉलोज हुबरिस, हुबरिस प्राइड है, नेमेसिस है आपकी डाउनफॉल. तो वैनिटी के द्वार से ले जाएंगी कि अरे हाँ आप तो हम योग में स्थित हो गए, और खासकर किसी को आपने कह दिया, ये तो सोच भी नहीं आनी चाहिए. अच्छा ठहर जाओ बताते हैं. तो ये सारी चीजें, और इवन स्पिरिचुअल फोर्सेस ये भी टेस्ट लेती हैं. इसकी तो वेदों में कहानियां हैं कई. इंद्र और अगस्त की पूरी वार्तालाप है इस पर, कोलोकी ऑफ इंद्र एंड अगस्त. अगस्त शीघ्रता से वही मैं पहुंच जाऊं वहां, मरुत की सहायता से जो सारी प्राण ऊर्जा और मन की जो के अंदर जो वेगवान बनाता है, तो मरुत की सहायता से वो जाना चाह रहे हैं अल्टीमेट रियलिटी की ओर. बहुत सुंदर है ये, इस पर एक टॉक भी है, और इस पर शेरविंद ने पूरा एक लिखा है वेद रहस्य में. तो इंद्र रास्ते में खड़े हो जाते हैं, कहते मैं तो नहीं जाने दूंगा. कहते आप तो देवता हो, मैं अल्टीमेट रियलिटी की ओर जा रहा हूं, आपका तो काम है मुझे और थोड़ा शरबत पिला के भेज देना. कहते नहीं, क्यों, तुम तैयार नहीं हो अभी अल्टीमेट रियलिटी के लिए. तो अगस्त वापस जाते हैं, जिसको फॉल अगर कहा जाए, और वो फिर से स्वयं को तैयार करते हैं. क्या चाहिए इंद्र को, विशालता. मरुत क्या कर रहे हैं, तीव्रता से ले जा रहे हैं ओवर ए नैरो पाथ. इंद्र कह रहे हैं नैरो पाथ से आप उस रियलिटी को बृहद ब्रह्मन जो सब जगह है आप नहीं जा सकते. तब वो समझ जाते हैं, वापस आते हैं, तैयार करते हैं, फिर वो अल्टीमेट रियलिटी. तब इंद्र कहते हैं ओके नाउ यू कैन गो. सो देर आर स्टेप्स एंड स्टेजेस. और यही हम देखते हैं विश्वामित्र की कहानी में, वशिष्ठ ऋषि की कहानी में. अगर हम कहानियां पढ़े आध्यात्मिक जीवन की, एक समय आता है जब वशिष्ठ ऋषि अटैचमेंट से इतना पीड़ित होते हैं. अब ये देखिए स्टार हैं जो सेवन स्टार सेजेस हैं, तो लिटरली वो स्पिरिचुअल लाइफ के स्टार्स माने गए, उसमें से एक वशिष्ठ हैं. और देखिए उनको बहुत डिप्रेशन हो जाता है एक समय, और शिप्रा नदी में कूदते हैं बांध करके पास कि भाई मुझे, मैं तैरूंगा ही नहीं, जीवन ही जीने का क्या फायदा है. शिप्रा नदी वो काट देती है उनके बंधन की, ये तो बहुत मे से पाप हो जाएगा. तभी उनका नाम पड़ता है उससे, सी विपाशा, उनके बंधन कट जाते हैं. विपाशा नदी तो बंधन कट जाते हैं, क्योंकि वो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, इनका तो लक्ष्य कुछ और है. बाद में वो देखिए कैसे ब्रह्म ऋषि बनते हैं, जिन पर कहानी लिखी है शेरविंद ने दी, आइडियल ऑफ फॉरगिवनेस. विश्वामित्र को भी उस कहानी में लाते हैं कि कैसे वो राज ऋषि बन के ब्रह्म ऋषि बनना चाहते हैं, लेकिन विनम्रता चाहिए. तो योग में ये सब आता है, ऑल दिस इज पार्ट ऑफ द जर्नी. लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए, और ये कि हमें ले जाने वाले माँ हैं, और जब एक बार वो पकड़ लेती हैं सोल को तो वो ले ही जाएंगी. एक सेंस में ये सबके ऊपर लागू होता है अल्टीमेटली, लेकिन खासकर जो होम गॉड लीड्स. अब वो चाहे महायुद्ध हो, बीच में कुरुक्षेत्र है जहाँ बहुत कुछ हो रहा है, पर आपने बागडोर सौंप दी है. तो इसी को शेरविंद कहते हैं फेथ काफ़ी नहीं, फेथ के साथ कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस क्या है, कॉन्फिडेंस की डिवाइन मदर. फेथ के साथ क्या जाता है, फेथ श्रद्धा, आई विल रीच, वाई मदर इज टेकिंग मी. पर जहां कुछ घटना हो रही है, आप परेशान हो रहे हो, तो वहां पे कॉन्फिडेंस, किसमें कॉन्फिडेंस है, इन द डिवाइन मदर्स ग्रेस. साथ में क्या आता है, ट्रस्ट. ट्रस्ट का मतलब क्या होता है कि भाई आपने एंट्रस्ट किया है किसी को, मैं ट्रस्ट करता हूं कि डिवाइन मदर को मैंने अपना जीवन सौंपा है, तो शी विल टेक मी इन दिस लाइफ और एनी अदर. मतलब ये भी होना चाहिए इस हद तक ट्रस्ट कि जीवन की कोई भी परिस्थिति इंक्लूडिंग मृत्यु सामने खड़ी हो, शी इज टेकिंग मी अलोंग. ये भाव से योग होता है, तो उसमें फेल्योर हो ही नहीं सकती. क्योंकि हर एक फेल्योर आपको प्रोग्रेस कराती है, आप कुछ सीखते हो, आपके अंदर विजडम आती है, आपके अंदर स्ट्रेंथ आती है. एक बड़ी सुंदर बात उक्ति किसी ने कही थी, विजडम इज द लाइट दैट कम्स आफ्टर वी हैव फेस्ड द स्टॉर्म. उसके बाद क्या होता है ना, रेनबो आता है, फट छट जाता है, तब आपको पता चलता है कि कहाँ हमसे भूल हुई थी. और वो सीखते हो, फिर ये नहीं कि लेमेंट करना है, बढ़ते जाना है, क्योंकि ये तो लंबी यात्रा है. तो ये है इस पंक्ति का, इसको पैसेज को बस मैं पढ़ लूँगा क्विकली. पेज 339 सावित्री में विजन एंड द बून है, जहाँ अशुपति जगन माता के द्वार पर खड़े होकर कह रहे हैं. अब यहाँ फेल्योर तो बहुत अलग डायमेंशन है. अशुपति तो व्यक्तिगत योग में यानी श्री अरविंद सफलता की सब सीढ़ियों को क्रॉस कर चुके हैं. उनके जीवन में भी उतार चढ़ाव सब आए हैं जो उन्होंने कहा है. अब वो किसके लिए ये मांग रहे हैं? सृष्टि के लिए, मनुष्य के लिए, कि वो जो मैंने पाया है माँ ये सबका हो, मैं अकेला कैसे एंजॉय करूंगा इसको. और इतनी बड़ी निधि ये सबके लिए चाहिए मुझे. और जगन माता उनको टालमटोल कर रही हैं. और उसमें एक जगह वो कहती हैं कि नहीं, समय लगता है, मनुष्य तैयार नहीं है, जल्दबाजी मत करो, तुमने तो पा लिया है. पैसे जैसे ही स्टार्ट होता है, ओ सन ऑफ स्ट्रेंथ हु क्लाइम्स क्रिएशन स्पीक, नो सोल इज दाई कंपेनियन इन द लाइट, अलोन दाउ स्टैंडेस्ट एट द इटर्नल डोर्स. कहते तुम मनुष्य के लिए मांग रहे हो, मनुष्य से पूछो वो क्या चाहिए उसको. वो तो शेरविंद माँ के पास भी आके वो तो यही मांग रहा है कि मुझे रोटी कपड़ा मकान चाहिए. उसको तो भगवान नहीं चाहिए, उसको रूपांतरण नहीं चाहिए, उसको तो वही चीजें चाहिए, पैसा चाहिए, सक्सेस चाहिए. तुम उनके लिए क्यों मांग रहे हो ये दिव्य जीवन? तो अभी वो वाला पार्ट है जहां वो समझा रही हैं. और बहुत लंबा पैसेज है तो हम लोग केवल एक बता रही हैं कि कैसे ये वॉक कितना लंबा चलता है, कैसे कैसे जगहों पर मनुष्य रुकता है, पड़ाव होते हैं. फिर एंड हार्डिएस्ट विक्ट्रीज विदाउट श्योर रिजल्ट इज जिगजैग टुवर्ड्स अननोन डेंजरस ग्राउंड एवर रिपीटिंग इट्स हैबिचुअल वॉक एवर रिट्रीटिंग आफ्टर मार्चेस लॉन्ग एंड हार्डिएस्ट विक्ट्रीज विदाउट श्योर रिजल्ट drawn endlessly in an inconclusive game. अगर हम बाहर से देखें तो ऐसे ही लगता है, या छोटे से कालखंड में देखें. In an ill-fitting and voluminous robe, a radiant purpose still conceals its face. A mighty blindness stumbles, hopping on, feeding its strength on gifts of luminous chance. क्या अद्भुत लाइन है. पता नहीं है क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, लग दिए साथ में आग, पता नहीं है पर्पस क्या है, क्यों है, पर कहीं ना कहीं एक कुछ है और चल रहा है व्यक्ति. ब्लाइंड है, स्टम्बल करता है, देख नहीं पा रहा लक्ष्य, समझ नहीं पा रहा है, लेकिन अचानक ल्यूमिनस चांस गिफ्ट्स. आपको लग रहा है अरे जीवन अब खत्म हो गया, अचानक कोई ऐसी घटना हो गई इसका आपने कल्पना नहीं की थी, और फिर से आप उठ खड़े हुए, ना केवल उठ खड़े हुए, एक नया मार्ग दिख गया. तो देखिए यहां पे शेरविंद ल्यूमिनस चांस, चांस इज ए वे ऑफ सेइंग, क्योंकि हमको पता नहीं है, तो कोई शक्ति है जो हमारे साथ साथ चलती है. यहां चांस मींस दैट, हम उसको चांस कहते हैं क्योंकि हमको पता नहीं है. और हम सबके साथ कि ऐसे अचानक लग रहा था अरे द्वार बंद हो गए, एक कोई चीज है जो आती है एक चांस के रूप में, घटना, एक कोई घटना होती है या कुछ अंदर में परिवर्तन आता है और अचानक एक नया द्वार खुल जाता है. तो इस प्रकार से कारवां चलता है. बिकॉज द ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट हैज फेल्ड, ये भी कहते हैं लोग कि भाई हम नहीं कर सकेंगे, नहीं कर पाते. ऐसा होता है कि कभी कभी एक जीवन में जो इंस्ट्रूमेंट बना है, माता जी ये सब अकाउंट रखा जा रहा है. एक लेडी से थोड़ी सी अनकूत सी थी, मतलब क्रूड क्या कहेंगे, गंवारनी इज नॉट ए गुड वर्ड बट उस तरह का चरित्री चारित्रिक गठन बोलचाल, बोलचाल में चरित्रिक गठन नहीं। माँ उसको बहुत विशेष कृपा और अनुग्रह रखती थी। इसे पूछा, माँ आप इस पर क्यों इतनी अनुग्रह करती हो? माँ कहती, ये इसने पूर्व जन्म में अपने बहुत पीड़ा सही है, अब मैं इसको आई वॉन्ट टू इंश्योर कि इसको कोई पीड़ा ना हो। इस नाव कई बार आप देखेंगे ऐसे लोग हैं जिनको भगवान सब जैसे कहते हैं ना सारी भूल माफ, और कुछ एक हैं जिनको एकदम झटके से पड़ता है, क्योंकि एक लंबी यात्रा है जिसका अकाउंट हमारे पास नहीं है, सोल के पास है या भगवान के पास है। ये मान के चलना चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है, कोई भी गॉडवर्ड एफर्ट कभी फेल नहीं होता है, वो कभी ना कभी रंग लाएगा ही लाएगा। दिया जितनी बार बुझे जला दो, सूर्य निकलेगा एक समय। रात में कितनी बार बुझरा रहे, सूर्य नहीं है भरोसा, क्या देखो लाइट जा रही है। अरे सूर्य और इस दिए का कोई कंपैरिजन नहीं है, जलाओ। आप सोच रहे हो कि सूर्य कई हजारों दिए जैसा होगा, और जब सूर्य निकलेगा तो जलता हुआ दिया भी अजीब लगने लगेगा, तो दिया जलाए रखो। यही होता है ना हमारे यहाँ अखंड ज्योति का। बिकॉज द ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट हैज फेल्ड, द गॉड हेड फ्रस्ट्रेट स्लीप्स विद इन इट्स सीड, ए स्पिरिट एंटैंगल्ड इन द फॉर्म्स इट मेड। कई बार ऐसा होता है कि एक जीवन में सफलता नहीं मिलती है, वो भी योग तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा नहीं कि उसके अंदर दिव्यता की संभावना नहीं थी, थी, बीज है, लेकिन फ्रस्ट्रेट क्यों? ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट नहीं, उसको संभावना थी लेकिन जो सारे ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट क्या है, मन प्राण शरीर, ये तैयार नहीं थे पूरी तरह से उसके प्रकटन के लिए। तो ऐसा होता है। अब आती है मास्टर लाइन कि तो फिर ये क्या हुआ, गॉड हेड फ्रस्ट्रेट बीच के अंदर सोता रह गया। अब ये ना बीज मरने वाला बीज है ना गॉड हेड गिव अप करने वाला गॉड हेड है, ये अमर्त बीज है। इसीलिए अगली लाइन है, हिज फेल्योर इज नॉट फेल्योर होम गॉड लीड्स। फॉर्म्स में ये, क्योंकि ये विकास फॉर्म के आधार पर हो रहा है, तो फॉर्म्स कई बार नहीं तैयार होते हैं कई कारण से। डजेंट मैटर, यू पुट योर एफर्ट, डजेंट मैटर, हर चीज अकाउंटेड है। पाप पुण्य अकाउंटेड नहीं है, लेकिन ये अकाउंटेड है कि आपने प्रयास किया, प्रयास किया, गॉडवर्ड अटेम्प्ट। कैसे प्रयास किया पता नहीं, हम तो रोज मेडिटेशन के लिए जाते थे, होता था मेडिटेशन नहीं भैया, कभी नहीं हुआ। अब उसमें दो श्रेणी के लोग होते हैं, एक जो 2 महीने बाद गिव अप कर देते हैं, या 10 दिन वाले कोर्स में चले जाते हैं जिसके बाद भी हाल वही होता है, और दूसरे होते हैं जो जाके बैठ जाते हैं, कहते हैं एक दिन तो लगेगा ध्यान। अब क्या हो रहा है, आपका ध्यान लगे ना लगे, भगवान का तो ध्यान जा रहा है कि बेचारा आ रहा है, कोशिश कर रहा है, नहीं हो रहा है। दिस इज द प्रोसेस, ये योग की प्रोसेस है कि आप प्रयास कर रहे हो, चाहे कोई भी वृत्ति है आप उसको जीतने का प्रयास कर रहे हो। माँ कहती विन योर लिटिल विक्ट्रीज, नहीं कर पा रहे हो, लेकिन वो जो आपने प्रयास किया, एफर्ट गया, विल के अंदर एक उठा कि आई मस्ट, ये सब एक दिन रंग लाता है। और माँ इसका बड़ा सुंदर उदाहरण देती हैं, कहती हैं कि एक लंबे समय तक आपको लगे कुछ नहीं हो रहा है, तो उदाहरण देती हैं अंडे का, अंडा क्या जाने क्या होगा, अब अंदर में उसके चूजा डेवलप हो रहा है, एक लंबे समय तक बाहर पता नहीं चल रहा है, लेकिन एक टाइम आता है जब जो हेन है ना बाहर, उसको पता है हो गया तैयार। अब देखिए क्या इंस्टिंक्ट होती है, वो ताप दे रही है अंडे को, फिर जब तैयार होता है तो एक बस चोंच लगती है और चूजा बाहर आ जाता है, तो लगता है मिरेकल हो गया, अरे साइकिक बींग मिल गया। हमारे साथ भी ऐसा हो जाए, हाँ, लेकिन वो अंडा इतने समय तक रहा है अंडे के रूप में, वही जो हम लोग गरुड़ और अरुण की कहानी सुन रहे थे, इट हैज प्रिपेयर्ड इटसेल्फ थ्रू द प्रोसेस। हिज फेल्योर इज नॉट फेल्योर होम गॉड लीड्स। थ्रू ऑल द स्लो मिस्टीरियस मार्च गोज ऑन An immutable power has made this mutable world. A self-fulfilling transcendence treads man's road. Self-fulfilling transcendence. ये संसार भगवान का है और सावित्री में कई जगह ये पंक्तियां हैं और वो इसके साथ हैं, इसके साथ साथ चल रहे हैं और सेल्फ फुलफिलिंग जो उनका महत संकल्प है वो फुलफिल होगा ही होगा. सेल्फ फुलफिलिंग ट्रांसेंडेंस. इम्यूटेबल पावर, ये संसार की रचना, ये जो ट्रांजिएंट है उसको एक ऐसी शक्ति ने की है जिसका कोई तोड़ नहीं है. इम्यूटेबल जो अल्टीमेट पावर है. The driver of the soul upon its path, it knows its steps, its ways inevitable. And how shall the end be vain when God is guide? He to Sanjay samajh gaya tha. Dhritarashtra ko kehta hai, dekho, main tumko yuddh ke pehle bata forecast kar raha hun. Prophecy karta hai Dhritarashtra. Kehte kya prophecy hai? कहते देखो एक चीज मैंने देख ली है, अभी जो बात वार्तालाप हुआ है ना श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में, मेरा ये मानना है कि जहां पार्थ धनुर्धर तैयार है जो समर्पित होके, यत्र पार्थ हो धनुर्धर यत्र योगेश्वर कृष्ण, और जहां उसके साथ उसका रथ स्वयं भगवान आकरे, विजय तो वही होती है. कुछ भी कर लो तुम, तुम्हारे 100 या 1000 पुत्र आ जाएंगे तो इस विजय को टाल नहीं सकेंगे. दिस इज द सर्टिट्यूड. और ये सत्य है और यही होता है कि सब चीज के थ्रू अल्टीमेटली लास्ट में क्या होता है, विजय तो कृष्ण और अर्जुन की होती है, क्या श्री कृष्ण की. एंड हाउ शेल द एंड बी वेन व्हेन गॉड इज गाइड. तो बस हमको बस ले जाओ माँ, जैसे भी ठीक है, अभी अच्छा नहीं लग रहा दृश्य देखने में, कोई बात नहीं, आप बस पकड़े रहना, बस इतने. However, man's mind may tire or fail his flesh. हो सकता है मन थक जाए या शरीर जवाब दे जाए. A will prevails, cancelling his conscious choice. Conscious choice क्या, अब नहीं होगा, अब बस हम रिटायर हो गए आश्रम के रिटायरमेंट, अब हम काम वाम नहीं करेंगे, हम बस ध्यान भजन करेंगे. तो ये विल प्रिवेल कैंसिलिंग हिज कॉन्शियस चॉइस. लेकिन एक और भी आपके ऊपर भी कोई संकल्प है आपको पुश करेगा. ये कितना हुआ है रमन महर्षि के जीवन में, देखो वो बार बार चले जाते थे छोड़ के, जैसे उनके पास डिसाइबल्स कर, मुझे एकांत चाहिए, एकांत चाहिए. यूज टू गो अवे बिकॉज इमेजिन एक ज्ञान योगी जो स्थित प्रज्ञावस्था में है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, लोग से भरे हुए हैं, तो जब भी भागते थे वापस वहां लोग पहुंच जाते थे, वहां से कहीं और भागते थे वहां लोग पहुंच जाते थे. शेरिंद इस पर एक पासिंगली रिमार्क भी करते हैं, तो फिर उनको जगन माता आती हैं एक बूढ़ी औरत के रूप में, तो शेरिंद ने कन्फर्म किया है शी वॉज द वर्ल्ड मदर. तो वो कहते मुझे जाने दो. कहाँ जा रहा है तू इतना छटपट करके. मैं एकांत में, मेरा मन कर रहा है मैं जंगल में चला जाऊं कहीं कोई ना हो. तो जगन माता कहती है तेरा जो काम है तू अरुणाचल को अपनी सीट बना ले, वहीं पर रहे, वही तेरी जगह है. तब कहा जाता है कि फाइनली स्टेट. तो ये विल प्रिवेल कैंसलिंग इज कॉन्शियस चॉइस. और ये तो एक योगी की बात हो रही है. अर्जुन युद्ध नहीं लड़ूंगा, कॉन्शियस चॉइस. एचलिस मैं नहीं लड़ूंगा. A will prevails, cancelling his conscious choice. The goal recedes, a boneless vastness calls, retreating into an immense unknown. अरे हमको तो लगता था आश्रम ज्वाइन कर लिया अब रूपांतरण हो जाएगा. अरे हमने तो वो कोर्स कर लिया था 10 दिन का, हमारा रूपांतरण हो जाएगा. ये क्या हुआ, साल गुजर गए, वो लग रहा है आपको थोड़े थोड़े एक्सपीरियंसेस. लेकिन कोई चीज़ है जो पुकारती जाती है. एक बड़ी सुंदर लाइन आहना में, Always we hear, in the heart of the battle, a flute go before us. युद्ध क्षेत्र में लेकिन श्री कृष्ण का फ्लूट, आओ आओ आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे आओ. There is no end to the world's stupendous march. There is no rest For the embodied soul, it must live on, describe all time's huge curve. Till he has found himself, he cannot pause. A light there is that leads, a power that adds, a power that aids, a light there is that leads, a power that aids, unmarked, unfelt, it sees in him and acts. Ignorant, he forms the all-conscient in his depths. Human, looks up to superhuman peaks. A borrower of supernature's gold, he paves his road to immortality. Antim do panktiyan. The high gods look on man and watch and choose. Today's impossibles for the future's base. I say, hey, devta, jo dekh rahe hain, prayas kiya. नहीं कर पाया, कोई बात नहीं है, सब नोटेड. और अचानक जब वो नया जन्म लेके आता है तो टुडे इज इम्पॉसिबल्स, भविष्य के लिए वो निधि साथ में जोड़ देते हैं. सो हार नाम की कोई चीज भगवान की डिक्शनरी में नहीं होती है. और जो व्यक्ति भगवान को अपना समर्पण करते हैं सत्य निष्ठा से और अंतिम तक बस वो मेरे साथ हैं, इस भाव से, इस श्रद्धा से चलते चले जाते हैं, चाहे जो भी हो, अच्छा बुरा सबके जीवन में होगा ये मान के चलिए, लेकिन जो इस भाव से चलते चले जाते हैं उनकी भी वोकैबुलरी से भगवान असंभव, फेल्योर, ये शब्द हटा देते हैं. जय मां.